ओम शांति। सुबह के सेशन में मेडिटेशन के अलग अलग स्टेप्स आप सीख रहे हैं, तो आज तीसरा लेसन है राजयोग की विधि क्या है, उसका आधार क्या है, उसके बारे में सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। मेडिटेशन जब हम राजयोग के तीन स्टेप्स हैं, जो पहले दिन देखा, पहला कदम, पहला स्टेप जो स्वयं की पहचान है, और दूसरे दिन जो देखा वो है परमात्मा का यथार्थ परिचय। तो आज हम देखेंगे तीसरा स्टेप, वो है आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ कैसे हो सकता है। वैसे तो बचपन से ही हम निरंतर किसी न किसी व्यक्ति को या वस्तु को याद करते आए। जब भी हम किसी वस्तु या व्यक्ति को याद करते हैं, हमारे मन का कनेक्शन उस व्यक्ति या वस्तु के साथ जुड़ने के कारण से हम कहते हैं उसके साथ योग है। किसी को भी याद किया और व्यक्ति तुरंत उपस्थित हो जाता है तो हम कहेंगे इसके साथ योग था, तो इसीलिए मिले, है ना। योग का सिंपल अर्थ है कनेक्शन, जोड़, कम्युनिकेशन। वियोग का अर्थ है अलग हो जाना, बिछड़ जाना, है ना। तो यहां हम तो बचपन से ही योगी हैं, सभी किसी न किसी व्यक्ति और वस्तु को याद कर ही रहे हैं, इनके इन चीजों के साथ योग है। लेकिन यहां जो हम कह रहे हैं राजयोग की बात, तो राजयोग में किसका किसके साथ कनेक्शन है, यहां आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन है। क्यों ये कनेक्शन जोड़ना जरूरी है? क्योंकि जब से हम कनेक्शन जोड़ते रहे, आत्मा की उन्नति जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो फिर आत्मा की उन्नति हो सकती है। क्योंकि सिंपल एनर्जी की बात है, एनर्जी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल को बहती है, है ना। जब हम परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, परमात्मा तो हायर एनर्जी है, तो फिर कनेक्शन जोड़ते ही परमात्मा के साथ जो एनर्जी है हमारे पास आना शुरू होता है। लेकिन व्यक्ति के साथ कनेक्शन जोड़ा, भले वो व्यक्ति उस समय किस मूड में, किस एनर्जी लेवल में होंगे वो पता नहीं है, है ना। तो उनके एनर्जी हमारे में वो फ्लो होगा। अगर वो व्यक्ति टेंशन में है, एंजाइटी में है, और फिर गुस्से में है, नेगेटिव एनर्जी अपने पास आ जाएगी। तो इसलिए इंसानों के साथ कनेक्शन जोड़ने से आत्मा श्रेष्ठ नहीं बन सकती, और वस्तुओं के साथ कनेक्शन जोड़ने से, वो तो जड़ है, पैसों के साथ, बंगले के साथ, गाड़ी के साथ, जो भी स्थूल चीजें हैं, जड़ चीजें, उनको, उन चीजों को जब हम याद करते उनमें कोई एनर्जी नहीं है, तो और ही हमारे एनर्जी नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। और कनेक्शन जोड़ने से फायदे क्या है? कुछ लोग मेडिटेशन मन की शांति के लिए करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मेडिटेशन करते हैं, कुछ अलग अलग प्राप्तियों के लिए मेडिटेशन करते हैं, अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। लेकिन यहाँ हम कहते हैं मेडिटेशन करने से आत्मा के अंदर जो गुण और शक्तियां हैं वो नेचुरल बन जाएगी। जब नेचुरल बन जाए, संस्कारों में पूर्णतः परिवर्तन हो जाए, ये है मेडिटेशन का लक्ष्य। और दूसरी चीजें तो ऑटोमेटिकली साइड में प्राप्त हो ही जाएगा, जैसे हम कहते हैं ना, बाय वन गेट वन फ्री, है ना। जब हम ये अनुभव करते हैं आत्मा के जो अनादि अविनाशी गुण है वो हमारा संस्कार बन गया, नेचुरल बन गया, क्योंकि अभी तक तो नेचुरल नहीं है ना, शांति हमारा नेचुरल नहीं है, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, कभी ईर्ष्या द्वेष भी आ जाता है, निरंतर स्नेह की भावना वो नहीं रहता, निरंतर सशक्त रहे वो नहीं होता। तो ऊपर नीचे हो रहा है। जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, ये जो आत्मा के ओरिजिनल अनादि अविनाशी गुण है वो नेचुरल हो जाए, अपने कर्मों में दिखाई दे निरंतर, वो है अंतिम लक्ष्य। उसके साथ साथ मन की शांति तो आ ही जाएगा, उसके साथ साथ स्वस्थ शारीरिक हेल्थ जो वो ही आ जाता है, हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं, ये सब कुछ अच्छे। लेकिन अल्टीमेट जो लक्ष्य है मेडिटेशन का, संस्कारों में पूर्णतः परिवर्तन और ये गुण नेचुरल हो जाए। जब ये होगा जब, तो फिर हम अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य कर सकते। तो इसीलिए इसको कहा राजयोग। योगों में राजा, योगों में राजा क्यों है? क्योंकि परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने के कारण से आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ जाती कि अपने ही कर्मेंद्रियों पर वो राज्य कर सकती है। इस संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है? दूसरों को डायरेक्शन देना, एडवाइस देना, या खुद को डायरेक्शन देना, खुद को अपने कर्म इंद्रियों पर वश रखना, वो मुश्किल है। कौन सा मुश्किल है? अगर कोई दूसरे गलती करता है उनको एडवाइस करना बहुत इजी हो जाता है, अरे तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, तुमने ये गलती कर ली, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं खुद अगर गलती करूं तो फिर कुछ ना कुछ बहाना बना देंगे, नहीं नहीं इसने ऐसा किया था ना, इसीलिए गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन गुस्सा क्यों आया? क्योंकि उसने झूठ बोला ना, मेरी गलती नहीं है, उसकी गलती है, वो झूठ बोला तो इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो कुछ ना कुछ सफाई देंगे अपनी गलतियों का, हम ये मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अपने ही कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल काम है, और यही हमारा कंट्रोल में है। दूसरों के कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में है? है? नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे खुद के कर्मेंद्रिय। मैं जो बोलना चाहूं वो कंट्रोल कर सकती हूँ, जो सुनना चाहूं उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, जो देखना चाहूं उसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन दूसरों के कर्म इंद्रियों को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। कर्म भी कंट्रोल नहीं कर सकते, परिवार वाले भी, वालों का भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते, कितने भी वो नजदीक है, नजदीक संबंध के हैं, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति दूसरा है ना, मैं तो नहीं हूं, है ना। तो यहां हम कहते हैं स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। मुझे खुद अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखना होगा, न केवल स्थूल कर्मेंद्रिय लेकिन सूक्ष्म कर्मेंद्रिय भी। मेडिटेशन करते करते आप इतनी सूक्ष्मता में जाने लगेंगे कि आपको पता चलता है, चलेगा कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फील कर रही हूँ, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई विचार आ रहा है तो कोई दूर से विचार नहीं आ रहे, बाहर से विचार नहीं आ रहे। विचारों को क्रिएट करने वाला कौन है? थॉट्स को क्रिएट करने वाला कौन है? खुद है। ऐसे कोई नहीं थॉट्स बाहर से आ रहे हैं, नहीं, अंदर से। मैं खुद उसके रचयिता हूं। तो हम अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपना एटीट्यूड, अपनी वृत्तियां, अपने संस्कार, सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? जब ये हमारी जो भ्रांतियां, बिलीफ सिस्टम जो है, उसको हमें थोड़ा बदलना होगा। पहला बिलीफ सिस्टम जो परसों देखा, अब तक जो शरीर समझते आए, अभी उसको हमने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना होगा। कौन सा, क्या समझना होगा अपने आप को? मैं एक आत्मा हूं। और वो आत्मा भी कौन सी है? दिव्य आत्मा हूं, श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। तो क्योंकि आत्मा के निजी गुण ये सारी बातें हैं ना। जब हम ओरिजिनली हम अपने गुणों को देखते हैं, तो फिर उन गुणों को, शक्तियों को हम अनुभव करना सीख जाते हैं। और दूसरी बात है परमात्मा का यथार्थ परिचय। जो कल देखा वो है बिंदी। जैसे आत्मा बिंदी है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, ऐसा परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अभी कनेक्शन कैसे जोड़ेंगे? अभी हर कोई अपने तरीके से, किसी ना किसी तरह से भगवान को, परमात्मा को याद करते आए हैं अलग अलग रीति से। लेकिन यहां हम कहते हैं परमात्मा को संबंधों के आधार से याद करें। और उससे पहले भी मन कहां कहां जाता है, क्योंकि यह याद की बात है, योग की बात है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने की बात है, तो मन कहां कहां जाता है? वो चार आधार है किसी न किसी को याद करने के लिए। हम कोई भी ऐसे अजनबी व्यक्ति को याद नहीं करेंगे। हम कभी मिले ही नहीं है, जिस व्यक्ति से हम मिले ही नहीं है, हम याद कर सकते हैं उनको? उनके बारे में चलो मिले नहीं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का समय है, अगर किसी का वीडियो देखा होगा या फिर ऐसा, तो फिर उसके परिचय है, तब तो उस व्यक्ति को याद कर सकते हैं। पहला आधार है परिचय, और दूसरा आधार है संबंध, और तीसरा आधार है स्नेह, और चौथा आधार है प्राप्तियां। जहां परिचय है वहां मन जाता है, हम याद करते हैं। लेकिन सभी परिचित लोगों को हम याद नहीं करते। सेकंड है जिनके साथ संबंध है, उनको हम याद करते, और सभी संबंधियों को हम याद नहीं करते। लेकिन जिनके प्रति हमारा थोड़ा गहरा स्नेह है, उनको याद करते हैं। और फिर चौथा है प्राप्ति, जहां प्राप्ति है उनको हम याद करते हैं। अब परमात्मा को याद करने के लिए इन चार बातें हमारे पास है। सबसे पहले परिचय है परमात्मा का। कल परिचय देखा, परमात्मा एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, सागर है, सर्वशक्तिमान है, ये परिचय। और फिर सेकंड लेवल है संबंध। संबंध कैसे जोड़े? वैसे तो आरती करते समय तो गाते ही है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे कृपा से सुख घनेरे। और ये भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि तुम मात पिता बंधु सखा सब कुछ आप हो, लेकिन जब तक हम मंदिर में हैं, तब तक हमने ये गुण गाया, ये कीर्तन गाया। लेकिन जैसे ही कर्म क्षेत्र में आए तो फिर क्या ये संबंध हम जोड़ के रखें? और अगर एक परिवार वाले पूरे हस्बैंड वाइफ बच्चे सभी मिलकर के गा रहे हैं, आप मात पिता बंधु सखा, तो किस नाते से परमात्मा सर्व संबंधों के साथ हमारे साथ है? अगर पति ये गा रहे हैं कि तुम मात पिता बंधु सखा, तो वाइफ तो ये नहीं गा रही है कि तुम सास ससुर, ये तो नहीं गा रहे, वो भी यही गा रही है मात पिता बंधु सखा सब आप हो। किस नाते से, किस नाते से? हर एक के शारीरिक नाते से तो अपने मात पिता है जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, लेकिन परमात्मा को जब हम पिता कहते हैं, किस नाते से वो पिता है? आत्मा के वो पिता है, शरीर का नहीं है। शरीर के अलग अलग मात पिताएं हैं, अलग अलग लोगों के जिन्होंने इस शरीर को जन्म दिया, लेकिन आत्मा के मात पिता बंधु सखा वो परमात्मा है जो। इस बात को जब हम समझते हैं तो फिर वो संबंध जोड़ना बहुत सहज हो जाएगा। और सर्व संबंध की बात यहाँ कह रहे हैं। सर्व संबंध जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि इस कलयुगी दुनिया में इतने सारे सगे संबंधी फ्रेंड्स सब होते हुए भी हर एक मेजॉरिटी अकेला महसूस कर रहा है। क्यों अकेलापन है? क्योंकि उस संबंध से जो स्नेह प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सभी लोग हैं, होते हुए भीड़ में भी आज इंसान अकेला है। क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन लोगों के साथ नहीं है, है ना? वो स्नेह प्राप्त नहीं हो रहा है। तो लेकिन हम कंप्लेन तो नहीं कर सकते, हे भाई मुझे प्यार दो, मुझे रेस्पेक्ट दो, मुझे सम्मान दो, मुझे रिकॉग्नाइज करो। नहीं, हम इंसानों से तो मांग नहीं सकते। अगर आत्मा को तो चाहिए, आत्मा को स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, शक्ति चाहिए, शांति चाहिए, तो कहां से लेंगे? परमात्मा से। क्योंकि इंसान के पास तो कलयुगी दुनिया में बहुत थोड़ा है। जैसे हम पूनम के चांद को देखते हैं, पूनम के चांद तो पूरा है, लेकिन सतयुग में हर एक आत्मा सर्वगुण संपन्न थे, तो जिसके कारण से जब हम कर्म में आते थे वो कोई भी कुछ चाहिए नहीं था, संबंध में मधुरता थी। लेकिन अभी कलयुगी दुनिया में हर आत्मा, जैसे अमावस के पहले चांद कैसा होता है? चांद कैसा होता है अमावस के पहले? एक लाइन होता है ना, उसमें मना कहेंगे 2% है, 98% अंधेरा है, है ना? ऐसे आत्माओं के अंदर 2% 5% शक्ति है, बल है, 95% खाली है। अभी 95% जब खाली है, मुझे भरना है, तो कहां से भरने की कोशिश करती हूं? इंसानों से। मुझे प्यार दो, रेस्पेक्ट दो, सम्मान दो, ये दो वो दो लेने की कोशिश कर रहे हैं। मैं 5% हूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति भी तो 5% है, वो कहां से देगा? कहां से देगा? इसलिए मल्टीपल रिलेशनशिप्स आजकल, क्यों? क्योंकि संतुष्टि नहीं है, जो मुझे मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो भी खोखला, मैं भी खोखला, मैं भी खाली, वो भी खाली, शेयर कैसे करेंगे? तो अभी समय है, मुझे आत्मा को भरना है परमात्मा से, क्योंकि वो तो सागर है, जितना भी लेते जाएंगे वो कम नहीं होगा वहां, वो तो सागर है। और वो निरंतर हमारे साथी है। ऐसा नहीं है कि उनका जो काम करने का जो ऑफिस आवर्स है 9 to 5 है, 5 के बाद भगवान अवेलेबल नहीं है, ऐसा हो सकता है? नहीं, 24/7 वो हमारे लिए अवेलेबल है। जब ये संबंध के साथ हम उनके साथ जुड़ेंगे तो अलग अलग जो इमोशनल नेसेसिटी है, स्नेह है, प्यार है, तो वो जो मुझ आत्मा को चाहिए होगा वहां से मैं प्राप्त कर सकती हूँ, और मैं आत्मा संपन्न बन करके लेने की जगह नहीं देने की भावना मैं रख सकती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा भरपूर हो जाऊंगी उस परमात्मा से सर्व संबंध अनुभव करके, है ना? तो वहां लेने की भावना नहीं देने की भावना जागृत हो जाता है। और फिर तीसरा लेवल है स्नेह। परमात्मा तो प्रेम का सागर है, परमात्मा तो प्रेम का सागर है, वो तो हमेशा अनकंडीशनली देते रहते हैं, उनका कंडीशन नहीं है तुम ये करोगे तो मैं प्यार करूंगा, नहीं, उनका प्यार निस्वार्थ है, प्रेम का सागर है, वो निरंतर देते रहते हैं। लेकिन हम ही कुछ ना कुछ बार्गेन करते हैं, है ना? वो आदत है बचपन से, कुछ ना कुछ मांगते हैं, हे भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो, परीक्षा में पास करा दो, ये प्रमोशन दिला दो, ये करा दो, तो फिर मैं 101 नारियल तोड़ूंगा, या फिर इतना दिया जलाऊंगा, या फिर ये करूंगा, चल करके मैं आपके धाम तक आऊंगा। कुछ ना कुछ हम बार्गेन कर, ये करोगे तो मैं करूंगा, अगर नहीं करेंगे तो, मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो वो जो मिलना था ना 101 नारियल, वो भगवान को नहीं मिलेगा। क्या भगवान को 101 नारियल की आवश्यकता है? आपकी एक, चलो 1001 कुछ भी हो, तो भगवान को आवश्यकता है उन सभी चीजों की? वो तो दाता है। हम ही वो आदत है ना रिश्वत देने की, ये कर लो मैं ये कर लूंगा, ये करो तो मैं ये करूंगा, ये रिश्वत। और भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करते, ये कर लो मेरा काम तो फिर मैं ये दूंगा, ये जरूरत नहीं है, ये बार्गेनिंग सिस्टम की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मेरा पिता है। उस अधिकार से जब मैं कनेक्शन जोड़ती हूं तो फिर ये छोटी मोटी चीजें करने की जरूरत है ही नहीं। क्या आप अपने माता पिता को रिश्वत देंगे? देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा हमारे हैं ना। शारीरिक माता पिता भी वो स्नेह है, तो उनको रिश्वत देने की बात ही नहीं है। अधिकार से बोलेंगे कि ये मुझे चाहिए, तो अगर यथार्थ है तो जरूर मिलेगा, है ना? तो वो स्नेह केवल प्राप्तियों के लिए नहीं, प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली मिल ही जाएगा, लेकिन निरंतर निस्वार्थ प्रेम जब हम रखेंगे तो फिर निरंतर मिलता जाएगा। नहीं तो फिर हमेशा जब संकट आता है तब मैं हम परमात्मा को ज्यादा याद करते हैं। जब मैं एजुकेशन जब हम कर रहे थे ना, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो फिर उसी गली में कॉर्नर लास्ट में एक गणपति मंदिर था, गणपति का मंदिर, तो वहां भीड़ कब लगता था पता है? जब एग्जाम्स होते थे और फिर रिजल्ट का समय होता था, वह तब भीड़ होती थी। सारे साल तो नहीं होता था भीड़, लेकिन फिर एग्जाम के टाइम पे और रिजल्ट के टाइम पे, कि सारे साल में भगवान को याद ही नहीं किया। जब कुछ संकट आता है, कुछ करवाना होता है, तो फिर उनकी याद। क्या सारे साल में पढ़ाई नहीं करूं और केवल मैं मंदिर में जाकर चढ़ावा चढ़ाऊं तो मैं क्या एग्जाम में पास हो सकती हूं? एग्जाम में पास हो सकती हूं? नहीं। खुद की मेहनत तो जरूरी है ना जीवन में भी। कर्म करना, श्रेष्ठ कर्म करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर कोई संकट आया, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आई, तो परमात्मा क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को नहीं निकालेंगे, लेकिन हमें मार्ग दिखाएंगे। खुद को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, कि प्रॉब्लम्स क्यों आया आपके जिंदगी में, चाहे रिश्तों में प्रॉब्लम या कुछ किसी लोगों के साथ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्यों आया जिंदगी में, कारण क्या है, वो व्यक्ति कारण है या मैं खुद कारण हूं प्रॉब्लम आने का। अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो वो प्रॉब्लम का कारण क्या है, कौन है, हम खुद है, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ कर्म किया होगा, ऐसे उस कारण से मेरे जिंदगी में ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम का कारण मैं खुद हूं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा, खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम को क्रिएट मैंने किया, उसको सॉल्व भी मुझे खुद को करना होगा। तो जब मुझे खुद को सॉल्व करना होगा, परमात्मा का कार्य क्या है यहां, फिर परमात्मा को याद करने की जरूरत क्यों है फिर यहां, जब मुझे खुद को सॉल्व करना है तो रास्ता दिखाएंगे। मेडिटेशन से, परमात्मा की याद से मेरे मन और बुद्धि में इतनी क्लैरिटी आ जाती, जो है ना क्लॉग, ये सब कुछ जो भरा पड़ा है वो सारा कुछ निकल के क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये करने से ये सॉल्व होगा, है ना, वो एनर्जी मिलेगी, वो क्लैरिटी मिलेगा, वो शक्ति मिलेगी परमात्मा से, तो फिर मैं अपने जीवन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, है ना। तो जब हम ये पता है तो फिर प्राप्ति क्या मिल रहा है, जब इसकी समझ है तो उस आधार से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि अल्पकाल की चीजों को हम मांगते हैं, हे भगवान मुझे बच्चा दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये दे दो, ये सारे स्थूल चीजें हैं, जैसे सूर्य को दिया दिखाने जैसे, वो तो बैठा है खजाना देने के लिए, हम मांग रहे हैं मूंगफलियां, मांग, वो तो हीरे जवाहरात देने के लिए तैयार है, हम मांग रहे हैं उनसे मूंगफली, है ना। तो परमात्मा से हमें गुण और शक्तियां मिलेगी, जब अपने जीवन को सशक्त बना देंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन में संपन्नता की अनुभूति ऑटोमेटिकली होना शुरू होगा, है ना। इसलिए अल्पकाल की चीजें मांगने की जरूरत ही नहीं है, खुद सक्षम है उन चीजों को हासिल करने के लिए। अगर ये क्लैरिटी है परमात्मा से क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, तो फिर उस आधार से हम वो कनेक्शन जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात जो पता चली आई है या मान्यताएं चली आई है, तो वो है पत्ता पत्ता हिलाने वाला भगवान है, उसके परमिशन के बिना इस संसार में कुछ नहीं हिलता। ये सच है या झूठ है? सच है, सच है। ज्ञान सरोवर में कितने पेड़ है? एक एक पेड़ में कितने पत्ते हैं? पूरे माउंट आबू में कितने पेड़ हैं? पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कितने पेड़ और कितने पत्ते हैं? अनगिनत है। क्या परमात्मा का काम एक एक पत्ते को हिला, हवा ऐसे चलो तुम ऐसे हिलो, ये काम है परमात्मा का काम है? ये क्या कहेंगे, नहीं है तो क्या है उनका काम? बहुत बड़ा अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री के मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर का काम क्या है? वो आराम से एसी कमरे में बैठेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, डिसीशंस लेंगे। जो मेजर डिसीशंस हैं, उनका काम वो है कि मेजर डिसीशंस लेना, पॉलिसीज बनाना, जो भी मैनेजमेंट का, जो ऊपर का लेवल, हायर लेवल में जो भी करना है वो करना। अगर कोई मशीन खराब होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएंगे, इस मशीन को ठीक करिए। मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे मशीन को ठीक करने के लिए? मैकेनिक को, है ना? तो अब परमात्मा कौन है? पूरे संसार के मैनेजिंग डायरेक्टर है। उनका कर्तव्य क्या है? उनका कर्तव्य वो है जो इंसान नहीं कर सकता है, वो परमात्मा का काम है। इंसान कौन सा काम नहीं कर सकता? पतितों को पावन नहीं बना सकता, केवल वही काम है परमात्मा का। पतितों को पावन बनाना, एक मार्गदर्शन देना, शक्तिशाली बनाना, वो है परमात्मा का काम। ये नहीं है कि तुम बैठकर ये करो वो करो, नहीं, वो फ्री विल है हमारा। क्योंकि अगर कोई हमेशा कंट्रोल, आपके पेरेंट्स भी आपको हमेशा कंट्रोल करते रहे, ठोकते रहे, ये करो ये नहीं करो, यहां जाओ यहां नहीं जाओ, आपको अच्छा लगेगा? फिर कहेंगे मैं तो बड़ा हो गया हूं ना, एटलीस्ट अभी तो छोड़ो मुझे, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा, कर लूंगी। फ्रीडम चाहिए होता है, राइट? ऐसे ही परमात्मा ने भी ये समझ दे करके हमें फ्री विल दे दिया है। सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझ परमात्मा ने दी है। और मेरा डिसीशन है मुझे क्या करना है अपनी जिंदगी में। डिसीशंस कंट्रोल वो नहीं करेंगे, डिसीशंस लाइफ के मुझे खुद को लेना होगा। केवल समझ देते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है ना। तो ये गाइडेंस परमात्मा से मिलता है, ये प्राप्ति है, बहुत बड़ा सपोर्ट है। महाभारत में भी पांडवों का विजय क्यों हुआ? क्योंकि श्री कृष्ण साथ थे, वो भले युद्ध नहीं लड़े लेकिन उनका गाइडेंस पूरी तरह था, उनका उनके उनका सहयोग पूरी तरह था, है ना? ऐसे ही जब परमात्मा को हम साथी बना लेंगे, कुरुक्षेत्र जो हमारा ये है उसमें हम विजयी हो सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस निरंतर परमात्मा से हमें मिलता है। तो ये है आधार, समझ, परमात्मा से क्या प्राप्ति होगी, है ना? और अभी हम देखेंगे विधि क्या है, मेडिटेशन करने की विधि क्या है, कैसे हम कर सकते हैं। सब फिजिकल विधि पहले देखेंगे, फिर सूक्ष्म रूप से मन में क्या सोचना है वो फिर हम देखेंगे। फिजिकली आप कहीं भी बैठ सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि एक टांग पे खड़े हो जाए, या फिर स्थूल विधि कुछ दूसरी बातें है ही नहीं, ठंडे पानी में नहाना है, ये करना, वो नहीं। आराम से जहां कंफर्टेबल है वहां बैठ सकते हैं, कुर्सी पर बैठना हो कुर्सी पर, या फिर जमीन पर, पद्मासन में, सुखासन में, जो भी। क्योंकि शरीर को अगर तकलीफ देंगे, अगर मैं मान लीजिए मेरे टांगों में दर्द है, अगर मुझे बोला गया पद्मासन में ही बैठ करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं, तो क्या होगा? पद्मासन में तो बैठ तो गई लेकिन दर्द है, तो बुद्धि कहां जाएगा? दर्द की तरफ। हम मैं फिर आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन नहीं कर सकती हूं। इसीलिए यहां कहते हैं शरीर को तकलीफ देने की बात नहीं है। हाँ, अलर्ट जरूर रहना चाहिए ताकि फिर वो नींद की अवस्था में नहीं जाए। और दूसरी बात है, यहां ओपन आई मेडिटेशन हम कहते हैं, आंखों को खुला रख करके हम मेडिटेशन करते हैं यहां। क्यों? क्योंकि जब भी आप आंखों को बंद करके मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो अगर आप आदत नहीं है मेडिटेशन करने की, 2 मिनट 3 मिनट आप मन को फोकस कर सकते हैं, लेकिन बाद में मन भटकना शुरू हो जाता है। क्यों? खुले आंखों में मन इसी हॉल में जो दिखाई दे रहा है उसी पर फोकस रहता है, लेकिन जैसे ही आप आंख बंद करते हैं तो इस कमरे से बाहर बहुत इजीली मन चला जाता है ना? जब तक अभ्यास नहीं है तब तक आंखों को बंद करके मेडिटेशन करने से इतना लाभ नहीं हो सकता। और दूसरी बात, आंखों को खुला रख करके मेडिटेशन क्यों करना है? क्योंकि राजयोग कर्म योग भी है। कर्म करते समय भी हम अपना कनेक्शन परमात्मा के साथ जोड़े रख सकते हैं, क्योंकि संबंध होने के कारण से याद करना इजी हो जाता है। जैसे आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपने परिवार वालों को इजीली मतलब काम भी कर रहे हैं याद भी कर रहे हैं, ऐसा हुआ था वैसे बोलना है, घर जाऊंगा तो फिर क्या बोलना है, वो भी याद कर रहे हैं, उस व्यक्ति को भी याद कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, दो दो काम हो रहा है। क्यों याद कर पा रहे हैं? क्योंकि संबंध है वहां, है ना? इन चारों बातों में कुछ ना कुछ है, परिचय, संबंध, स्नेह, प्राप्ति, इन चारों में कुछ ना कुछ बात है, इसीलिए आप कनेक्शन जोड़ पाए हैं कर्म करते समय भी। ऐसे ही परमात्मा के साथ भी इन चारों लेवल्स में जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं, कर्म करते समय भी परमात्मा को हम याद कर सकते हैं। अगर ये आदत हम डाल देंगे, आंख बंद करे तो ही मैं परमात्मा को याद कर सकती हूं, तो कर्म योग हम नहीं कर सकेंगे, कर्म करते समय परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। इसीलिए बैठ करके जब हम योग लगाते हैं, आंखों को खुला रख करके जब हम परमात्मा को याद करने की आदत डालते हैं, हम कर्म योग भी कर सकते हैं। और आंखों को कितना खोल के, इतना पूरी तरह खोल के रखने की जरूरत नहीं है। जब आप योगियों के चित्र देखते हैं, उनके उनके आंख कैसा होगा? बहुत पूरा खुला है, हाफ ओपन है, हाफ ओपन है ना? गुरु नानक जी की बात देखे या महात्मा बुद्ध को देखे तो वो आंख हाफ ओपन है। वो क्यों? उसका अर्थ क्या है? माना आंख आधा खुला है, माना भले मैं मुझे दिखाई मैं देख रहा हूं, लेकिन पूरा ध्यान मेरा अंदर है। इन आंखों से जो देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, भले आंख खुला है लेकिन फिर ध्यान पूरी तरह मेरे खुद में है। कई बार आपने भी अनुभव किया होगा, आप गहरे चिंतन में होंगे, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, कुछ गहरे चिंतन में है, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ लोग आए गए, आपका ध्यान नहीं जाता है क्योंकि अंदर इतने बिजी है आप सोचने में, कोई आए गए पता ही नहीं चलता है। और वो तो कहेंगे मैं तो आके गया ना, अच्छा आप आए थे मेरे कैबिन, मुझे ध्यान नहीं था, मैं आए तो ध्यान आके गए, इन आंखों से देखा अभी आपने लेकिन रजिस्टर नहीं हुआ यहां। क्यों? क्योंकि अंदर पूरी तरह आप बिजी थे। ऐसे मेडिटेशन की प्रक्रिया में भी भले आंख खुला है लेकिन अंदर इतने आप अपने में व्यस्त है, देखते हुए भी नहीं दिखाई दे, ऐसा अभ्यास हमें करने की जरूरत है, इसीलिए ओपन आई मेडिटेशन हम रिकमेंड करते हैं। और मेडिटेशन करने का समय कौन सा अच्छा होगा? अमृत वेला योग तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अमृत वेले का समय ब्रह्म मुहूर्त जो कहते हैं, वैसे ब्रह्म मुहूर्त तो 2 बजे से शुरू हो जाता है, सुबह 2 बजे से लेकर के 4:45 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन फिर हर कोई 2 बजे तो उठ नहीं सकते, तो 4 बजे से ऑफिशियली हम कहते हैं 4 से 4:45 बजे ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेले का समय है, जिस समय आप मेडिटेशन करेंगे कम समय में ज्यादा आप अनुभव प्राप्ति आप कर सकते हैं। कारण क्या है? क्योंकि सारी रात की नींद के कारण से ब्रेन तो पूरी तरह फ्रेश हुआ होता है और फिर मन भी फ्रेश होता है, जिस कारण से आप एकाग्र बहुत जल्दी कर सकते हैं। और दूसरी बात, उस समय 4 बजे जो सुबह का समय, तमोगुणी जो वातावरण है वो थमा हुआ होता है, क्योंकि जो भी गलत काम है संसार में, डकैती, चोरी, जो भी नाइट क्लब्स, रात को 2, 3, 4 बजे तक वो खुला रहता है, बाद में वो सारे गलत काम, नेगेटिव तमोगुणी जो कर्म है, और रात को पूरी होकर के सुबह जो अमृत वेले का समय है, सभी कुछ सो गए होंगे सभी, तो इसके कारण से तमोगुणी वातावरण थमा हुआ होने के कारण से आप बहुत जल्दी कनेक्शन जोड़ सकते हैं और अनुभव शक्तियों की, गुणों के अनुभव आप कर सकते हैं। तो इसीलिए अमृत वेला मेडिटेशन बेस्ट माना जाता है। अगर किसी भी कारण से आप अमृत वेला नहीं उठ सकते, सेकंड बेस्ट टाइम है जब भी आप उठे, 5 बजे उठे, 6 बजे उठे, उससे देरी नहीं, सूर्योदय के बाद नहीं, 7, 8, 10 नहीं, 6 बजे लास्ट है ना, तो एटलीस्ट तब उठेंगे। तो जब भी आप उठे, वॉशरूम जाकर के आकर के जो स्टार्टिंग में जो 15-20 मिनट है, जब उठते ही 15-20 मिनट बहुत क्रूशियल टाइम कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। उस समय अगर आप श्रेष्ठ चिंतन करेंगे या परमात्मा को याद करेंगे, आप देखेंगे सबकॉन्शियस माइंड को अफेक्ट करना बहुत इजी है उस समय, क्योंकि जैसे ही आप उठते हैं, चेतन मन, कॉन्शियस माइंड पूरी तरह एक्टिव नहीं होता है। उठते ही आप भागना नहीं शुरू करेंगे, उठेंगे धीरे से, बैठेंगे धीरे धीरे, आप बाथरूम जाएंगे, धीरे धीरे शुरू होगा, फिर बाद में थोड़ी देर 5, 10, 15 मिनट के बाद आपकी जो एक्टिविटी है फास्ट गति का, वो शुरू होता है। क्यों? क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में 15-20 मिनट कॉन्शियस माइंड, चेतन माइंड एक्टिव नहीं होता, उस समय आप परमात्मा को याद करेंगे तो आप सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन या संस्कारों को बदलना बहुत इजी हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना, अगर कुछ गड़बड़ होता रहा दिन भर में, कहेंगे पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह सुबह, है ना, क्योंकि सुबह का समय परमात्मा को याद करने से पूरी तरह वो एनर्जी मन में भर जाने के कारण से पूरा दिन वो एनर्जी रहेगी। और नेक्स्ट बेस्ट समय है मेडिटेशन का रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को सोने से पहले भी पूरी तरह जैसे ना आधी नींद में है, जैसे थके हुए है, पूरी तरह कॉन्शियस माइंड एक्टिव नहीं है, पूरा दिन जो भी चला वाइंड अप करके परमात्मा को अर्पित करके फिर आप सोएंगे, आप देखेंगे आपकी नींद है बहुत ही फ्रेश रहेगा, उसमें सपने कम आएंगे और जितना ब्रेन को नींद की आवश्यकता है वो पूर्ण हो जाता है ना। तो भले बैठे, लेकिन 15 मिनट जितना टाइम मिले वो आप कर सकते हैं। लेकिन दिन भर में भी कर्म योग करने के लिए सुबह सुबह बैठ करके मेडिटेशन करना यह आदत डालना होगा। लेकिन बैठ करके मेडिटेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक कर्म योग भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बातें हैं। और क्या सोचना है अंदर बैठ कर, क्योंकि बैठ तो जाएंगे, फिजिकली तो बिठा देंगे शरीर को, लेकिन मन को बिठाना, जब तक समझ नहीं है मन को कैसे बिठाना है तो फिर मन को नहीं बिठा सकेंगे। मन से सोचना क्या है? मेडिटेशन करने में तीन शक्तियों को हम यूज करते हैं। एक है सोचने की शक्ति, पॉजिटिव थिंकिंग। जो भी विचार दूसरों के बारे में, कर्म के बारे में चल रहा था, उसको विड्रॉ करके स्वचिंतन करना शुरू करते हैं। मन को चैनलाइज करना, बाहर से निकाल करके आत्मचिंतन करना, विचारों की शक्तियों को यूज करना, है ना, एक है। और दूसरी बात है विजुलाइजेशन की शक्ति। विजुलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। जैसे हर एक के अंदर वो बुद्धि की शक्ति है विजुलाइजेशन करने की, कि अगर आपको कहे कि यहां बैठे बैठे आप विजुलाइज करें आप अपने घर में सिटिंग रूम में बैठे हुए हैं और आपके सामने एक आम है, आम आप काट रहे हैं और खा रहे हैं, यहां बैठे बैठे वो आप बुद्धि में उसको विजुलाइज कर पाए, कर पाए, ये शक्ति है बुद्धि में। यहां बैठे बैठे कहीं भी हम कुछ भी विजुलाइज कर सकते हैं। यहां बैठे बैठे आप कहे, अगर आपको कहे सागर किनारे पहुंच जाइए, आप ये महसूस करें ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो भी विजुलाइज हो सकता है ना। ये बुद्धि में ये ताकत है। मेडिटेशन में विजुलाइजेशन की शक्ति को हम यूज जरूर करें, क्योंकि अगर विजुलाइजेशन नहीं करेंगे मेडिटेशन पावरफुल नहीं हो सकता। और तीसरी बात है महसूस करने की शक्ति। ये विजुलाइज करें कि आपके हाथ में एक नींबू है, नींबू को काटा चाकू से और एक चुस्की ली आपने नींबू की, थोड़ा सा, विजुलाइज करें, थोड़ा सा टेस्ट किया आप नींबू को, कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, क्या परिवर्तन दिखाई दिया? एक्सप्रेशन तो चेंज हो जाता है लेकिन अंदर, मुंह के अंदर सलाइवा है ना, आया ना, क्योंकि भले आपने नहीं खाया, केवल विजुलाइज किया कि मैं नींबू खा रही हूं, तो वो बॉडी में चेंजेस दिखाई देता है। दिस इज द पावर ऑफ विजुलाइजेशन और महसूस करने की शक्ति, है ना। तो इन तीन शक्तियों को यूज करेंगे मेडिटेशन करते समय। एक है चिंतन, बाहर से अंदर की ओर ले जाकर के आत्मचिंतन करना, सोचना, पॉजिटिव थिंकिंग, श्रेष्ठ चिंतन। दूसरा है विजुलाइजेशन और तीसरा है महसूस करने की शक्ति। जब मैं ये कहूं मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति की अनुभूति होना चाहिए, ऐसा नहीं केवल सोच रही हूं, केवल विजुलाइज कर रही हूं, नहीं, मैं आत्मा सचमुच शांत हूं, महसूस होना चाहिए, ये बात है। ये तीनों शक्तियों को यूज करते हुए मेडिटेशन हम करेंगे। मेडिटेशन करने से पहले कुछ अगर आपको प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन के संबंधित कुछ अगर प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ये करने से तीन स्टेप्स मैंने बोला ना, आद प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट है। अगर मान लीजिए अगर जिंदगी भर आपने अब जिम गए ही नहीं, एक्सरसाइज किए ही नहीं, एक दिन आप जाएंगे जिम में और एक दिन में मसल्स डेवलप नहीं होगा, तो हर रोज जाएंगे, हर रोज एक घंटा आप जिम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, धीरे धीरे बॉडी में चेंजेस दिखाई देने लगता है। ऐसे ही मन को हमने ट्रेन ही नहीं किया, बचपन से फ्री रखा मन को, जहां जाना चाहे जाओ, अभी उसको लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कंट्रोल में आएगा? आएगा जरूर, लेकिन टाइम लगेगा, है ना। अगर बच्चों को बचपन से ही फ्री रखा, तुमको जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन 20 साल के बाद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे बच्चों को, अभी क्यों कंट्रोल कर रहे हो, तो वो तो हाथ में आएंगे ही नहीं ना। मन को भी ऐसा है, कंट्रोल किया ही नहीं हमने, अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम लगेगा। ठीक है, ये मेडिटेशन के साथ ही कनेक्टेड है। मेडिटेशन जब आप करना शुरू करते हैं, डिटैचमेंट आना शुरू होगा। डिटैचमेंट माना ऐसा नहीं कि घर बार से डिटैच या संबंधों से डिटैच, नहीं, खुद के बॉडी से डिटैचमेंट आना शुरू हो जाता है। आत्मचिंतन जब हम करना शुरू करते हैं तो फिर आप उन प्रॉब्लम से भी डिटैच होना सीख जाएंगे, है ना। डिटैच करना सीखना पड़ेगा आपको, मेडिटेशन करते करते ये आदत पड़ जाएगी डिटैच होने की। क्योंकि डिटैच जब तक नहीं होंगे ना, कि जैसे प्रॉब्लम है यहां, जब तक ऊपर से नहीं देखेंगे पूर्ण सच नहीं दिखाई देगा। वहां घर है, घर के कमरे में अगर बैठ करके मैं सोच रही हूं इसको टिक नहीं, तो ऊपर से देखेंगे तो ओवरव्यू पूरी तरह 360 डिग्रीज दिखाई दे रहा है, तब जाकर के राइट सॉल्यूशन जिंदगी के लिए, उस प्रॉब्लम के लिए दिखाई देगा। ऐसे ही जब भी समस्या है डिटैच हो जाइए, मैं आत्मा हूं, परमात्मा के साथ जोड़ करके फिर उसको देखेंगे तो संपूर्ण सच आपको दिखाई देगा, है ना। मैं दूसरे मेडिटेशन के बारे में इतना नहीं जानती हूँ, हाँ मैं इतना जान सकती हूँ कि थोड़ा बहुत पता है। अगर वो लोग श्वास के बारे में फोकस करने की कोशिश करते हैं, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, उस पर फोकस करना, तो ये मेडिटेशन और भी बहुत ऊंचा है। क्योंकि उन मेडिटेशन में से वो बॉडी से लेकर के लास्ट पॉइंट उनका आत्मा तक पहुंचते हैं बस। हम ये कहते हैं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही यहां से है, आत्मचिंतन करते हुए फिर ऊपर जाना है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना है, है ना। तो बॉडी पर अभी तक तो भान है ही, है ना, शरीर का भान। हाँ थोड़ा स्टार्टिंग में अगर प्रॉब्लम होता है फोकस करने के लिए, तो फिर आप ब्रीदिंग पर फोकस करके फिर आप आत्मचिंतन करके फिर आप जा सकते हैं। वहां तक ठहरना नहीं है, फिर वो कनेक्शन जोड़ना बहुत जरूरी है। आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि आप आंखों को खुला रख करके आपका ज्यादा महसूसता या एक्सपीरियंस हो रहा है या फिर आंख बंद करके। हम ये यहां भी एक कहते हैं कि ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पूरी तरह आप आंखों को खुला रखना है ये जरूरी नहीं है, बीच बीच में आप बंद भी रख सकते हैं, लेकिन ये सजेस्ट जरूर करेंगे लंबे काल तक आप आंखों को बंद करके नहीं रखिए। कुछ सेकंड्स के लिए आप बंद करें फिर खोलिए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के लिए बंद नहीं रखे, नहीं तो फिर मन भटकना शुरू हो जाएगा। मेन फोकस से आत्मचिंतन हो रहा है, मेरा कनेक्शन जुड़ रहा है, वो मेन फोकस है अपना। ठीक है, मेडिटेशन करें फिर। सभी अपने अपने मोबाइल साइलेंस में रख देंगे पहले। जैसे जैसे मैं डायरेक्शंस देती जाऊंगी, वैसे वैसे आप सोचेंगे, विजुलाइज करेंगे और महसूस करेंगे। स्थूल आंखों को एक जगह पर टिका दीजिए, लेकिन फोकस वहां नहीं करना है। आंखों को स्थिर रखने से मन को एकाग्र करने के लिए मदद मिलता है। फोकस अपने भ्रुकुटी के बीच। आसपास के वातावरण से, आवाजों से मन और बुद्धि को डिटैच करें, किनारा करके भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें। वहां अपने आप को देखने की कोशिश करें। एक चमकता हुआ अजब सितारा, चैतन्य शक्ति आत्मा, अजर अमर अविनाशी हो, चैतन्य ये शरीर केवल मेरा वस्त्र है, जिसको धारण कर मैं आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कर्म कर रही हूं। ये शरीर जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य शरीर को मृत्यु है, मैं आत्मा अजय अमर मैं आत्मा मालिक हूं, करता हूं, भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर मैं आत्मा इन आंखों की खिड़कियों के द्वारा देख रही, भ्रुकुटी के मध्य में बैठकर कानून द्वारा सुन रही हूं। मुख द्वारा बोल रही हूं। अलग अलग कर्मेंद्रियों के द्वारा अलग अलग कर्म कर रही हूं। मुझ आत्मा का निजी गुण शांति है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांति के प्रकंपन में आत्मा पूरे शरीर में फैला रही हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा पवित्र स्वरूप आत्मा शक्ति स्वरूप आत्मा जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूं वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप रूप में बिंदु गुणों में सिंधु है। पर्वती पार परम धाम में रहने वाले जो मेरा घर सो परमात्मा का घर। मेरे पिता परमात्मा भी शांति का सागर है। शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा तक पहुंच रही है और मैं आत्मा उसको अब्सॉर्ब कर रही हूं, ग्रहण कर रही हूं। सर्वशक्तिमान पिता से सर्वशक्तियों की किरणें मुझ आत्मा तक पहुंच रही है। मैं आत्मा उनके अति प्रिय संतान मास्टर सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान से शक्तियां लेते हुए मैं अपने दुख दर्द बोझ सब कुछ नष्ट करती जा रही हूं। परमात्मा के हवाले कर रही हूं। बहुत हल्का महसूस कर रही हूं। लाइट होती जा रही कि मुझे विश्वास है परमात्मा मेरा साथी है। जब परमात्मा मेरा साथी है कोई भी समस्याओं का हल ढूंढना मुश्किल बात नहीं। जैसे मक्खन से बाल निकालने जैसे मुझ आत्मा को ये अटूट विश्वास है कि परमात्मा मेरा साथी है। शिव बाबा मेरा साथी है। मेरा हाथ उनके हाथों में है। निरंतर मैं परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। निरंतर परमात्मा से ले रही हूं और संसार को दे रही हूं। ओम शांति।